परंतु पूछना आप पर कितनी कृपा है कि जो वस्तु भक्तों के हृदय की निधि है, जिसकी आराधना शिव ब्रह्मा जी निरंतर करते रहते हैं, उन चरणों ने पूतना के देह पर बलपूर्वक आक्रमण किया, चढ़ गए जानबूझकर और स्तनपान किया। तो कहते हैं भाई ये अनोखी चीज है, जो भजन करते हैं वो तो होते हैं भक्त, और जो भजन नहीं करते उनको कहते हैं अभक्त। भजन करने वाले भक्त और भजन न करने वाले अभक्त। पर जो भगवान से द्वेष करते हैं वे भक्त तो है ही नहीं, अभक्त भी नहीं है, वे तो द्वेषी हैं। तो अभक्तों को कहीं भक्तों का संग मिल जाए तो भक्त बन सकते हैं, पर जो द्वेषी हैं वे तो भक्तों का संग करना चाहते ही नहीं। तो इसलिए भगवान नाना अवतार लेकर के द्वेषियों का हनन करके उनको मुक्त किया करते हैं, परंतु द्वेषियों को अपने चरण नहीं देते, मुक्त करते हैं, परंतु पूतना पर बड़ी कृपा कि पूतना को अपने चरण कमल भगवान ने दे दिए, और उन चरणों को लेकर के भगवान पूतना के वक्षस्थल पर टिके रहे बहुत देर तक। वो छुड़ाती रही, अलग करती रही, और ये अलग हो नहीं। और पूतना ने ये बात भी नहीं कि भगवान समझाओ, भगवान समझ के पूतना ने नंदन नंदन को गोद में लिया, वो सो बात नहीं, बालक समझा और बालक समझ के उनको गोदी में लिया, और गोदी में लेकर उसने चाहा कि अब स्तन पिला करके मार डालें। तो इसलिए भगवान नंद नंदन ने उसके उसका दूध पीने के साथ साथ प्राणों को उसको उसके चूस लिया। तब उसके मन में आया कि भगवान तो नहीं पर कोई साधारण बालक है, भगवत बुद्धि तब भी नहीं हुई, और उसने चाहा कि बाली ने चाहा था कि हम भगवान के सामने मर जाए, पर इसने चाहा कि छोड़ दे, मुंच मुंच कहा छोड़ छोड़ तू जोड़, और अलग हटाना चाहा, अपने स्तनाग्र को निकालना चाहा, परंतु पूतना का सारा परिश्रम विफल हो गया भगवान के सामने, उनकी कृपा के सामने वे उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बहुत साधना करने के बाद ब्रह्मा शिवादि भी जिनके चरणों का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे चरण पूतना को अपने हृदय पर मिले और बलपूर्वक उनको अलग करने की चेष्टा करने पर भी भगवान की कृपा ने उस असुर बल को परास्त कर दिया, और नंदनंदन ने इस अयाचित अपनी कृपा से ही लालधान्य दिशा स्वर्ग मवाप जननी गति बालक हत्या कारणी रुधिराशना हिंसा प्रवृत्ति वाली सूचना को विषमय स्तनपान कराने पर भी स्वर्ग माने भगवान में रहने, भगवान के रहने का स्थान, अपना स्थान और माता की गति दी, मा चुकी गति गई ताय कृपा अनुजादवराय। तो ये रंग नंदन की अपार कृपा। तो पूतना पर जो भगवान कृपा हुई इससे ये बात समझ में आती है, सिद्धांत की बात कहते हैं कि भगवान को जाने अजाने किसी प्रकार से भी भगवान से मन का किसी इंद्रिय का किसी प्रकार से भी संयोग हो जाए तो वो वस्तुगुण ऐसा है कि उसको वो हर तरह से अपना लेता है। तो भगवान के साथ संपर्क होना चाहिए, तो फिर ये इतना ही नहीं कि वो कैसे अपनाता है, वो कहता है, वो कहते हैं कि धात्री की गति भी भगवान ने, धात्री गति, संसार के बंधन से मुक्त होकर किसी का किसी को कैवल्य प्राप्त हो जाए ये धात्री गति नहीं है, ये सहज है। वो तो जिसको मारते हैं भगवान उसकी भी मुक्ति हो जाती है, परंतु यहां पर तो भगवान ने और उसको धात्री गति दी, माता के समान गति उसको दी। तो इसलिए इसका ये भगवान की बड़ी भारी कृपा उसके ऊपर। तो कहते हैं कि जब स्तन पान कराने से विष में उसको गति दे दी, तो भाई ये परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इनको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े अनुराग से अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और अपने और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु दे लेते हैं, उनकी तो फिर बात ही क्या है। ये रुद्राशना रुधिर पीने वाली ये बालकों का खून करने वाली राक्षसी पूतना जहर के स्तन पिला करके भी अगर मातृगति को प्राप्त हो गई, तो जो लोग परब्रह्म परमात्मा कृष्णा परमात्मा ने परमात्मा श्री कृष्ण को और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक जो और उनको जो प्रिय वस्तु लगती है वो वस्तु दे देते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। कहते हैं भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि ये सबके बंदनीय है, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं, ये भक्तों के हृदय की पूंजी है। उन चरणों से भगवान ने पूतना के शरीर को दबाकर स्तनपान किया। तो ये राक्षसी थी पूतना, परंतु जो उत्तम से उत्तम गति मिलनी चाहिए वो गति इसको दे दी और इसके स्तन का पान भगवान ने किया। पर जो माताएं मातृस्थानियां और जो गोपियां, ये बहुवचन है ना, तो इसलिए है कि ये जब भगवान जब ब्रह्मा जी हर ले गए और भगवान ये सब बच्चे बन गए, तो सारी मात्राओं का गोपियों ने दूध पिया। तो कहते हैं कि जिन गोपियों का जिन गायों का भगवान ने प्रेम से दूध पिया उनकी तो बात ही क्या है। तो कहते हैं कि परीक्षित ये भगवान देवकी नंदन ये कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं, उन्होंने गोपियों के और गायों के उस दूध को जो भगवान के प्रति पुत्र भाव रखती थी और वात्सल्य स्नेह के कारण से जिनके स्तनों से दूध अपने आप झरता रहता था, भगवान ने भरपूर पान किया। कहते हैं राजन वे गौएं और वो गोपियां जो निरंतर भगवान को पुत्र रूप से देखती थी वात्सल्य भाव से, वे कभी संसार के चक्र में आ सकती हैं क्या? ये तो जो अज्ञान के कारण चक्र होता है, ये संसार चक्र की प्राप्ति होती है, ये अज्ञान तो उनका उसी समय धुल चुका है जब ज्ञान के आश्रय भगवान इनके गोद में आ गए। इस प्रकार से भगवान की कृपा का वर्णन करके और गोपांगनाओं की और ब्रज की गायों की महिमा गाकर अब सुखदेव जी आगे चलते हैं कि पूतना की तो गति हो गई। इतने में एक कथा आती है ब्रह्म वैवर्त में, लोगों ने देखा एक विमान आया बड़ा सुंदर, और विमान में विमान का वर्णन करते हैं कि विमान कैसा था, इसको लेने को आया तो स्थूल देहम परित्यज्य सूक्ष्म देहम विवेश सा आयुरोह रथम शीघ्रम रत्न सारद निर्मितम पार्षद प्रवय दिव्य निष्ठितम सुमनोहर श्वेत चामर लक्षण शोभितम लक्ष्य दर्पण वन्य सोचे वस्तु ने सूक्ष्म भूषितम वरम नाना चित्र विचित्रश्च सद्रत्न कशेरितम सुंदरम शतचक्रम च ज्वलितम रत्न तेजसा पार्षदास्ताम रथे कृत्वा जग्मुर्लिबेरोकमुत्तमम दृष्टिया तमद्भुतम लोका लोकिका चाति स्मृता। दिखाई दिया गोपियों को कि जब पूतना का देह इस प्रकार से नष्ट हो गया तो पूतना उन लोगों ने देखा कि बड़ी सुंदरी एक देवी बन गई है, चिन्मय देह प्राप्त हो गया उसको और उस देह में वो प्रविष्ट हो गई चिन्मय देह में, और एक रत्नों के सार से बना हुआ, दिव्य रत्नों के सार से बना हुआ एक विमान आया। वो विमान बड़ा दिव्य था और पार्षदों से घिरा हुआ था। उसमें 100,000 सफेद सफेद चंवर लगे हुए थे और लाखों दर्पण उसमें दिव्य दर्पण लगे थे और उसमें अग्नि से भी में भी दग्ध न होने वाले सुंदर सूक्ष्म महीन वस्त्रों के पर्दे लगे थे और नाना प्रकार के चित्रों से वह सुंदर था। रत्नों के कलश उसमें रखे थे, उसके 100 सुंदर चक्के थे रत्नों के बने हुए पहिए, और रत्नों की ज्योति से वे पहिए सब चमचमा रहे थे। इस प्रकार के उस विमान को देख करके पूतना चढ़ने को तैयार हुई तो पार्षदों ने बड़े आदर पूर्वक उसको चढ़ा लिया और गोलोक की ओर ले गए। गोपियां सब विस्मित होकर के देखती रही कि ये क्या हो गया। तो ये उन लोगों ने बताया पूतना से कि अब तुम भगवान के उस गोलोक धाम में, अद्भुत धाम में, गोलोक उत्तमम जो सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम है उसमें तुम जा रही हो। इस प्रकार से पूतना की सदगति हुई भगवान की कृपा से। अब सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा तो आ रहे थे। नंद बाबा ने और उनके साथियों ने दूर से ही वो सुगंध का अनुभव किया, बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है, भैया कहां से आ रही है। तो आगे बढ़े तो ये सब लोग वहां पर खड़े ही थे, उपनंदादि थे, गोप लोग थे, क्योंकि नंदनंदन तो चले गए। सब सब प्रसन्न थे, पूतना के देह को जलाकर आश्चर्य में डूब रहे थे कि देखो ना ये गंध कहां से आ रही है। तो उन्होंने सब हाल बताया कि इस प्रकार पूतना आई और इस प्रकार और वो यहां ले आई श्रीनंदन को। तो घर ये बोले नहीं, डरने की बात नहीं, लोगों के घर पहुंच गए, वो मजे में है, बोले तब कोई बात नहीं। तो सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि अब तो इससे रहा नहीं, अब जल्दी चलो घर, लाला को देखेंगे। तो नंद बाबा जल्दी से घर पहुंचे और मौत के मुंह से मानो बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सिर सूझने लगे और मन मन बड़े प्रसन्न हुए। अब कहते हैं सुखदेव जी यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्धकम् अद्भुतम् श्रीया श्रद्धया मृत्यु गोविंदे गोविंदे लभते रतिम्। कहते हैं भाई इस पूतना मोक्ष नामक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला को जो सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, मन सच बात है, भगवान के साथ किसी प्रकार का संपर्क हो जाने पर ही भगवान अपना ध्यान दे देते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है उसको भगवान गोविंद में प्रेम प्राप्त होता है, रति रति प्राप्त होती है, ये इसका महात्म्य है। अब इसके बाद ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब इसके बाद भगवान का करवट बदलने के उत्सव का वर्णन ये 7वां अध्याय में होगा। और तो उसके पहले 2 लीलाएं, मधुर लीलाएं हैं, और सुना दें तो ये जब पूतना मर गई और खबर पहुंची वहां कंस के यहां, तो कंस बड़ा विस्मित हो गया कि पूतना से तो किसी बालक का बचना संभव ही नहीं, और पूतना को मार दिया और हमारा बगीचा सारा का सारा ध्वंस हो गया, तो जरूर कोई न कोई इसमें अजब बात है, नई बात है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर सभा जोड़ी उसने, कहा भाई कोई तैयार हो, देखो पूछना मारेगी। तो वहां बहुत लोग तैयार थे, राक्षस तो तैयार थे ही, पर कुछ राक्षसी वृत्ति के और लोग थे जो किसी पूर्व पुण्य से सतकुल में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो हो गए, पर थे वो राक्षसी वृत्ति के ही। रामचंद्र भी तो ब्राह्मण ही था ना, पुरुष का पौत्र था। तो एक तो था श्रीधर नाम का ब्राह्मण, श्रीधर नाम था, और एक था भट्ट था, बाल भट्ट था एक। तो उन लोगों ने कहा कि देखो अब हम अपना काम करते हैं, तो ब्राह्मण देवता जो थे ये श्रीधर जी, ये पहले आए, इन्होंने आकर के और बड़ा सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण तो थे ही, और आकर के नंद बाबा के यहां। अब नंद बाबा के यहां तो बड़ी विचित्र बात ये थी कि इनको तो सबका आशीर्वाद लेना है, तो यशोदा मैया के यहां जो भी ब्राह्मण साधु अभ्यागत आ जाए, अब बोले इनकी खुद ही सेवा करें अपने हाथ से, तब ये लाला को आशीर्वाद देंगे, और कोई कामना नहीं, लाला को आशीर्वाद दे जाए। तो ये ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आए, दो चेले वेले भी साथ ले लिए, और वेद पढ़ते हुए आए और बोले कि बस ये बच्चा तो चिरंजीवी होगा, रमर होगा, ऐसा वैसा। तो बोले महाराज रसोई बनाऊंगा, बोले इसीलिए तो आए, रसोई बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन हम तो भाई देखो जल जो है ये शुद्ध जल पीते हैं, अशुद्ध जल तुम्हारे घर घर का पीते नहीं हम तो। यमुना जी से कोई नहा करके जल भर के लावे, चौका उका दे तब रसोई बने, तब हम खाएं, अपने आप रसोई बनाएंगे। बोले महाराज नहा के बना दे तो अच्छा बात, अच्छी बात है, पहले नहाओ जल लाओ। तो बड़ी श्रद्धालु बजरानी यशोदा मैया, बड़ी श्रद्धालु ये नहाई और कल से सिर पर रख करके चली यमुना जी को ब्राह्मण की पूजा करने की। रोई भी पीछे गौरी, बोले ठेर बहन ठेर मैं ले आती। बोले नाना, यशोदा जी के मन में आया कि भी अपने आप सेवा करेंगे तो ब्राह्मण ज्यादा प्रसन्न होगा, नहीं तो समझेगा कि किसी को भेज दिया है, अपने आप तो आई नहीं, तो इसलिए मैं अपने आप हाथ से इनके लिए जल लाऊं और ये भोजन बनाऊं, और भोजन पाकर जो तृप्त हो ना तब नीलमणि को लेकर के इनके चरणों में डाल दी, और ये फिर आशीर्वाद दे रहे ब्राह्मण का आशीर्वाद अमोर होता है तो मेरा ये लल्ला चिरजीवी हो जाएगा। तो रोहिणी से कहा नहीं नहीं बहनी, तो नहीं देखो मैं ले आई ना सारा, आप पीछे से घर संभालो, तैयारी करो सही सही की, मैं तो तुम जानते ही, और आप तैयारी करो, मैं अभी जल लेके आती हूं। तो ये तो चली गई जल लेने को। अब वो केवल कलेवा ही ब्राह्मण अगर था उसका, उसका मन तो राक्षसी था, कंस का भेजा हुआ और आया था यशोदा नंदन के प्राण हरण करने के लिए, ये उसका उद्देश्य था। तो रोहिणी जी वापिस आ गई, अब नंदरानी के पैरों में मेहंदी मेहंदी लगी हुई थी अभी हाल की ही, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये एक महीना पूरा हुआ था, 30वां दिन था, तो नंदरानी पहले दिन ही यमुना जी को पूज करके आई थी, तो लौटते समय थक भी गई थी। आज फिर वो जल की कलसी लिए बड़ी श्रद्धा के साथ गई। रोहिणी के हृदय में भय तो हुआ कहीं कुछ हो न जाए, पीछे पीछे जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि फिर घर में दोनों बच्चे खिले रह जाएंगे, नंदरानी तो ही आ जाए और नारायण की भोग सामग्री तैयार करनी है, भोग लगाना है, और पंडित जी महाराज के लिए भी तैयारी करनी है। तो रोहिणी मैया लौटी आई और वो गई। रोहिणी मैया ने बच्चे की ओर देखा, सोया हुआ लोले पर बड़े मजे में, तो पास में दासियों कहा तुम लोग बैठे रहो, और ब्राह्मण तो पंडित जी का चले आप बैठे रहना। बोले हाँ मैं भी बैठा, क्या बात है, पंडित जी बैठे थे
दिगंबर भी आज छोरी घर में नंबर आया भी चले गए थे गोष्ठ में, तो यद्यपि उनका मन मानता भी नहीं था, मन में बड़ा डर रहता था, क्योंकि बसदेव जी ने कह दिया था उत्पाद होने की बात, तो अलग नहीं जाते थे। लेकिन उन्होंने देखा जब तो कोई बात नहीं है आज तो, और तू अपना बाहर चले गए थे काम से, और फिर सौंप दिया था नारायण को। बोले भाई यदि नारायण ने तुम दत्तों से कृतन आया हमें तेन वो सर्दम निर्गोढ़ा सोड़ा च मन जोड़ना, नारायण ने मेरे जैसे दीन के हाथ में तुमको दिया है, तो वही सारी व्यवस्था करेंगे, वही निभाएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेरे अपराधों को सहते हैं, यूं बच्चे से कहकर के चले। अब बजराज जो है ये तो रहे, और वो गई जल भरने के लिए, रोड़ी भी चली गई रसोई में पाकशाला में, तो अब ब्राह्मण देवता पास है दासों को सदर भेज दिया। ब्राह्मण देवता बैठे घात में सुंदर जी, मन मन बड़े प्रसन्न के तो अकेला मिल गया, बच्ची समझ रहे थे ना अकेला मिलेगा। उन्होंने नंदन नंदन की ओर देखा कि छोटे से पालने पर सोए हुए हैं, और जाते समय मैया ने क्या किया था कि जरा सी देरी ढीली कर दी थी पालने की, और पालने को जमीन से चटा दिया था, इस भय से कि कोई पीछे से जोर से उनको झुला जोर कहीं दे पड़े, बच्चे भी तो हैं छोटे से, और बाहर बाहर एक तरह था सूख छाज पड़ा था, छाज छाजला जिसे कहते हैं, उसका कोना फटा दिया उसके, कोना फटा दिया उसके, और कोने पर उसका हाथ उनका हाथ रख रहा है, इसलिए कि कहीं नजर न लग जाए, न रहती तो काजल वाजल लगा देती, कुछ कहती टीकी उसी देती, और ये कहीं पीछे से नजर लग जाए तो सूट का कोना छाजबे का कोना इसलिए दे दिया कि जिसमें इसको नजर न लग जाए। तो ये सवेरे के वक्त ऐसा डर रहा करता है नजर का, तो कहते हैं जो काल के भी काल हैं भगवान, जिनके भय से यमराज सारे काम करते हैं, माता उनको वात्सल्य भाव से और इस सूट के कोने को सटा देती है। सूदास जी कहते हैं देखो अद्भुत अवगति की गति, कैसे रूप बहरे हुए हो, तीन लोक जाके उधर बसत हो सो सूट के कोने पर है ये दशा उनकी। तो इस प्रकार से उसी अभी तो पहचान सके नहीं, उन्होंने देखा कि अब ठीक करना हमारे अभिमान का भी कंटक उसे दूर कर देना है, तो वो अपना तैयार हुए, सोचा कि बस ये ब्रजरानी आने के पहले पहले कर दे, हमारा तो कोई नाम होगा ही नहीं, भी कैसे मर गया कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। अब भगवान को सब जाने, मन की बात जाने, उन्हें सोचा कि ब्राह्मण हमारे कैसे, ब्राह्मण अवध होते, फिर मन में आया तो कहीं सिर में फोड़ा हो जाए तो क्या कीड़ा नहीं बनाते क्या, अरे ब्राह्मण तो सिर स्थानीय है, तो सिर में भी फोड़ा हो जाए तो पोषण कराना पड़ता है और करना पड़ता है, तो इनको मारना तो नहीं है लेकिन इनका इनके कुछ अंगों को ठीक कर लेना है। तो अंग याको में जन नसाई किसी जहाज में नहीं आया, तो जो सदानंदन की बात समझ में आ गई, इनकी समस्या तो सुलझ गई पर इनकी उलझ गई बेचारे की। तो श्रीधर गेहूं लपक करके पढ़ने के पास आया, तो अब यहां तो घटनी घटना पटवेशी भगवान की योग माया, तो भगवान का कलेवर तो जो का जो रहा, पल्ली में सो रहे जो के तुम एक हाथ बढ़ा, और ये हाथ जो है आगे बढ़ा इतना कि श्रीधर का हाथ उसके हाथ में आ गया, उस हाथ में आ गया, और इतनी जोर का झटका लगा फिर श्रीधर को कि वो धमाक से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ इस ब्राह्मण को कि मानो दोनों चरणों के आर पार धरती में घुसेड़ते हुए तो किसी ने दोनों दो की जड़ दी, वेदना नहीं हुआ, पर पैर धरती से चिपक गए। अब वो तस्य मसलन है वहां से। इसके बाद क्या अनुभव हुआ, मानो हम इस बच्चे ने जीव को पकड़ के आंख दिया तो बोलने की शक्ति विलुप्त हो गई। अब भय के मारे उम्र में देखने लगा बच्चे को, हिल सके नहीं, इतने मुझको दिखाई दिया कि बच्चा उठा। और बासई जो घर था कोठरी अंदर की, इसने जा पहुंचा और वहां दही के मटके पड़े थे भरे हुए मक्खन वक्खन के, तो जा करके कुछ मटकों को फोड़ दिया, इसलिए देख रहा है। और वहां से कुछ दही ला करके उस बच्चे ने उनकी उसकी शुगर गली पर लगा दिया। अब ब्राह्मण को तुम राष्ट्रीय बच्चा देगा जो छोड़ा हुआ है, इसके लिए कहीं दही दही लगा दी, और ये सब कर करके मानो सो लिया वो। अब ब्राह्मण देख रहा है, अब ये रो रो भूख लग गई रो, तो ओनी मैया दौड़ी इतने नहीं जल का घड़ा ले करके यशोदा मैया भी आगे रोता देख, वो भी उठा लिया रेसे लगाया। अब देखे तो ये भाड़ फूटे पड़े हैं, मटके फूटे पड़े हैं, तो ब्राह्मण को मुंह को देखा देने लगा। तो ये ब्राह्मण ने कुकर्म क्यों किया, इसकी तो राक्षस जरूर है। तो ब्राह्मण से पूछा कि वो सब बताओ क्या बात है, पर वो तो हो गया दूंगा। तो ब्राह्मण के मुख बासन आवे, जीव हो तो कैसे समझावे, लिखते हैं कि जीव तो थी नहीं, अब ये बेचारा बोले क्या। तब ये तमाम देखने इकट्ठे जो बोले है तो इनको ये बदमाश, पर ब्राह्मण है तो चलो सदा कर उपनंद जी आए, बोले कोई भी इसको घर से बाहर निकालो, तो उठा करके बाहर डाल दिया जीवों को, तो बाहर छोड़ जाए सीमा के बाहर, बोले गज के बाहर निकाल दो। अब वो ऐश्वर्य का प्रकाश ये हुआ ना, पर बजरानी को तो इसकी गंध तक नहीं, वहां तो ऐश्वर्य की छाया तक होती नहीं, तो देखते देखते संध्या हो गई, स्तनपान कराया और फिर उनको पान लेने भुलाया। तो ब्राह्मण के बेचारे की दुर्गति हुई, फिर भगवान को तो पाया ही। तब ये खबर पहुंची तो महाबल भट्ट जो था, महाबल भट्ट ने कहा कि अब हम जाते हैं। वो बड़ा चतुर रहा और ज्योतिषी बना रहता था, वो कम सके दरबार का ज्योतिषी रहा, दरबारी ज्योतिषी राक्षस को यहाँ का ज्योतिषी रहा, कि जैसे राजा वैसे ज्योतिषी बात। तो महाबल भट्ट आया, महाबल भट्ट ने आकर के और अपना पोथी पकड़ा पंचांग उठाने लिए ज्योतिषी के रूप में आया, और ये मैया से रोज व्यक्ति जी कोई ब्राह्मण आ जाए ये बता दे कि तुम्हारा बच्चा चिरजीवी होगा, उसके इसके इसके संतान होगी और बड़ा भारी ये सब ये तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तो माँ खुशी होगा। तो फिर ये ब्राह्मणों को तो नए नए ब्राह्मण रोज आए मैया को खुशी करें और धन ले जाए। तो ये महादल भी आया, खूब बंठन करके आया, बड़ा लंबा छोड़ा कि तुलक उलक लगा के रामवाणी ओढ़ कर ये खूब मजे में आया, बड़ा सम्मान किया भट्ट जी का। भट्ट जी बैठे, बोले तुम्हारे बच्चे को लाओ जरा देखेंगे, तो बच्चे को लाया, हाथ देख लेख करके और सब इकट्ठे हो गए। वो लेकिन इकट्ठे हो गए बड़ी सरिता से, बोले हे पंडित जी दादा बताओ तो अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है ना, इसका सब मंगल तो होगा ना, सब ठीक है ना। तो भट्ट जी ने मुंह बना लिया, देखा ये भोले वाले हैं, इन लोगों को फंसा करके इन्हीं के द्वारा करवा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। जो मुद्दी तो भट्ट जी ने मुंह बना लिया, गंभीर कर लिया है, बोले पंडित जी क्या बात है, कोई रोग नहीं होने वाला है क्या, इसको काम से करवा दो, आप जब जब कर दो। और गंभीर हो गया तो बोले बात क्या है, बड़ी बड़े डर गए सब लोग, बोले बात क्या बताओ, ये पैदा हुआ नील तो इसमें जोग पड़ा है कि ये दंश को निर्मूल कर देगा, ये बड़ा कुलक्षणी है, बोले महाराज को जपवत करो, बोले जप नहीं, ये तो घर में रहना ही अच्छा नहीं, या किसको जंगल में फेंक दो या गढ़ा खोद के गाड़ दिया जाए। ये सुनते ही महाराज ये सब के सब क्रोध से भर गए। अब भगवान की योग माया ने देखा कि इसका काम तो आज प्रकृति के द्वारा करवाना है, तो यहां तो सब चेतन रहे ना, तो प्रकृति में भी प्राण आ गए। तो वो महाबल भट्ट ने जब ये कहा कि इसको जंगल में फेंकवा दो अथवा गढ़े में डाल दो, इतने मच्छी के अगर हाड़ी थी तो हाड़ी पड़ी भट्ट जी के माथे पर। भट्ट जी वहां मस्तक घूट गया। अब प्रकृति की सारी चीजें सब मुझे हम भी अपना अपनी सेवा बजाए, अभी सेवा बजाए तो सुनबच्चा बड़ा था, सुनबच्चा चला वहां से और भतीजी की मरम्मत करने लगे और बच्चे दोनों। इतने में ईखर का जो मूसल रहा इसने कहा हम अपना काम करें, मूसल चला तो भागा, ये भागा प्राण बचा कर ये सब पीछे पीछे मूसल और सिलबच्चा और पीछे पीछे भागे जाए। भागने लगा तो रस्ते में खटिया ने देखा हम काम करें तो रस्ता रोक लें, तो चार पाई आप रस्ता रोक लिया। बड़ी मुश्किल मार पड़े बेचारा भागा, किसी तरह से भाग निकला। ये कथा जो है एक महाराष्ट्र में शिव है, पंडित हुए हैं बड़े भारी विद्वान, उन्होंने हरिविजय नाम के ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में महाबल भट्ट की कथा आती है, उन्होंने ये लिखा है कि नारद पुराण की किसी प्राचीन प्रति में उनको ये कथा मिली, किसी पुराण का नहीं होगी। तो महाबल भक्त का ये सारा बल चूर हो गया। अब तो बहुत घबराया कंस, तो कंस ने आकर के तोरण थी, कंस ने लोगों को डराया कि भाई अब तो कोई उपाय करो नहीं तो क्या होगा। तो एक रहा काकासुर, ये अगली कथा के साथ इसका संबंध है। काकासुर रहा कौवे का उसका देह रहा, एक वो काक बिजुंडी वो भी काक रहे और ये भी काक पर अलग अलग होते हैं। तो काकासुर ने ये सब अपना भेद जान लिया, तो तैयार हुआ था उत्कच दैत्य, उत्कच पीछे आएगा। तो उसने कहा तुम भेज रहा ठहरो, तुमको क्यों जाना पड़े, हम तुम्हारे छोटे भाई, पहले हम ही जाएं। तो ये काकासुर वहां से तैयार हुआ, तो ये कौवे के रूप में आए। अब कौवे उड़ते ही आए जाते हैं, कौन देखता कौन निगाह करता है, बोले यहीं पर जाएंगे तो कोई पहचान लेगा, कुछ पहले से कुछ गड़बड़ से लेकर दे। तो अपने कौवे के रूप में आया, तो काले कौवे के रूप में आया। तो आगे उसने शिशु को देखा, मन प्रांगण में आ गया, तो और इन्होंने उस काले कौवे को देख लिया, आंख से लिए देख लिया उस तरफ। तो भगवान ने क्या किया कि ये उसको पकड़ पाजा यूं लपक के पकड़ लिया, पकड़ के कंठ दबा कौवे का, और कंठ दबा के उन्हें घुमाया और घुमा के फेंका, तो बिछाया जा करके कंस को गोदी में पड़ा। कंठ चाप बहु बार फिरायो, गह पट को नृप पास परो। बेहोश होकर के काकासुर जो है कंस के सभा मंडप में जाकर के कंस के सामने जा गया, एक पहर तक सेवा शिथिलता वहां की वही उपचार किया गया, तब कहीं होश आया बोलने की ताकत आई। उसने कहा कि भैया कंस अब तो मामला गड़बड़ है, फिर हम कहीं सब आई सबे धर्य अवतार महाबल को एक कर मेरे गर्व हरे, सूरदास प्रभु कंस निकंदन भक्त हो तो अवतार भरे। युद्धा जी कहते हैं कि काकासुर ने कहा कि कंस जी अब तो आ बनी है, बस अब तुम्हारी आ बनी, अब तो मैं देख लिया कोई महान बलवान ने अवतार लिया और मेरे शरीर का बलवान एक ही हाथ में मेरा सारा घर भर लिया एक ही झटके में। तो सुरदास जी कहते कंस निकंदन भगवान ने अवतार लिया है। तो काकासुर जो है ये बड़ा बलमदान था जब इसकी गति हुई, तो इस कथ ने कहा कि नहीं सब कायर लोग कि हम जाएंगे। इस कथ था ये हिरण्याक्ष का पुत्र, तो ये चाक्षुष मन्वंतर की बात है। ये उत्कट जो था ये लोमस जी के आश्रम में जा पहुंचा, तो ये इसको तपोवन की शोभा से अच्छी नहीं लगी, इसने आश्रम को पेड़ों को तोड़ डाला। तो वृक्षों पर जो ये बेमतलब अत्याचार हुआ इसको ये मुनि से नहीं देखा गया, तो उन्होंने साथ दे दिया विदेह भवगर मत देह रहित हो जाए। तो ये वायु रूप बवंडर रूप बन गया, ये बवंडर रूप बन गया राक्षस। तो फिर इसने प्रार्थना की, महाराज ने तो मारा गया, मुझसे बड़ी भूल हो गई, तो ब्राह्मण बड़े भारी सदैव होते हैं, तुरंत राजी हो जाए तो प्रसन्न हो गए। बोले भैया क्या चाहते हो? बोले हमारी देह फिर मिल जाए और हमको अच्छी गति मिल जाए। तो बोले कोई बात नहीं, वैसित मनमंत्र में भगवान के चरणार बिंद का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, तब तुम तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम अभी जाओगे। यही उत्कर्ष राक्षस ये कंस की सभा का सदस्य रहा, कंस से इसकी निचर्चा हो गई थी और ये बजेंद्रनंदन से अब मिल करके मुक्त होना चाहता था। तो इसको तुमने सोचा कि अब जाए, इसको तुम हंस करके कहा नहीं कैसे थे कि महाराज मैं जाऊंगा। तो कंस ने कहा भाई तुम क्या जाओगे, ब्रज भीतर उपजो मेरे ऋषि, मैं जानू यह बात दिन ही दिन वह बढ़त जात है मेरे करहे घात, ब्रज सुता पूछना पठाई छिनमे में मान संहारी, जीत मोर दियो काजा सुर मेरे भुज फटकारी। तो तुम क्या जाओगे तो ब्रज में जो पैदा हो गया मेरा बैरी, तो दिन बढ़ रहा है वो तो मुझे मारेगा ही, मैंने पूछना को भेजा उसने क्षण भर में मार दिया, और काका सुर बिचारे की तो चांसी मरोड़ गई और मेरे पास फेंक दिया, ऐसे कौन मारी है चाको मुंह कहे से आए, बाको मार अपन को राखे सुर भजन सो जाए। बोले कौन ऐसा जो इसको मारेगा, ऐसा कोई है जो मेरे सामने आवे? तो इसके सुने कहा महाराज खूब दो कर गए भयों से खा लो, प्रभु आए से मैं पाऊं, यहाँ से जाए कृपा ही मारो कहो तो जीव चले आऊं। उसके सुने कहा कि मैं तैयार महाराज, यदि आप आ जाए तो अभी जाए तो या तो मार ही लाऊ और आपको तो पकड़ के ले आऊंगी यहीं पर उस बच्चे को। तो कंस बड़ा हर्षित हो गया, कंस ने कहा अच्छा तुम जा। अब यहाँ पर जो ये सूचनाबद्ध की कथा हो गई, तो परीक्षित राजा ने सुदेव जी से कहा ये नवतारे न भगवान हरि ईश्वर है करोति कर्म रम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभो विच्छिन्नवतो पैतृतिर्विकृष्णान् सत्त्वं च शुद्धत्वकेन पुंसः भक्तिर्हरौ भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेवहारं यदमन्यसे चेत् यथामृतकृष्णश्च टीकाचेतमद्भुतं मांसं लोकमासाद्यो तज्ज्ञाचनिरुन्धता। परीक्षित ने कहा प्रभु हे सुखदेव जी महाराज, सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी लीलाएं की हैं और ये सारी लीलाएं मेरे मन को बड़ी प्यारी लगती, बड़ी मीठी लीलाएं हैं और उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा की अरुचि मिल जाती है और भोगों की तृष्णा भाग जाती है, मनुष्य का अंतगण शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है भक्तों के प्रति। यदि आप मुझको अधिकारी समझते हैं तो भगवान के मनोहर लीलाओं का और वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस मानव लोक में प्रकट होकर मनुष्यों का ऐसा स्वभाव धारण करके जो बाल लीलाएं थी ये सब बड़ी अद्भुत है, टीका चरित्र मधुतम, बड़े अद्भुत ये बाल चरित्र हैं। इसलिए आप दूसरी कोई बाल लीला मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, कदाचि लोत्थानकौतुकात्प्लवे जन्मरक्षयोगे समवेतयोषितां वाजित्पुरभूत द्विगुणमन्त्रवासकौष्टकारसेनोरभिषेचनं सति। अब ये नया उत्सव पर्वत बदलने का उत्सव, वो तीसरा महीना लगा था तो एक दिन ये सब पास बैठी रही ना, सब भाइयाँ के पास रहती और ये सब यशोदा से बढ़ करता ये देखती रहती सब ये क्या करता है। इन्होंने देखा तो ये थे नंदन नंदन आराम से और अपने आप यथात चिलके और तिलक करके अपने आप दाहिनी करवट ले। अरे तो ये तो हंसी थी सब, बोले आज को करवट बदलने लारा ने करवट बदली, आज अपने आप इतना बल आ गया ना लारा ने करवट बदल दी। तो स्वयं पार्थिव ने तो पूरम स्वयानमन सुकुमार कुमारा पूर्ण तीरथ विलोक्य सदवृत्ते धातृ मातृ निजित मात्र सानंद कंदलिका निज नंदन मंगलाच से स्पृहणी श्रीमनंद सुकुम सुगृहणी भक्तिराज्ञा सुज्ञाता संभूय धीय सर्वासन हूय चलो महोत्सव महामहोत्सव सदारा। तो जब भगवान ने करवट ली तो फिर तो कहना ही क्या है, ये नंद नंदन को करवट बदले से देखकर धात्रियों के मन में आनंद का मन सागर उमड़ पड़ा, एक ही साथ सब जोर से जोर ध्वनि कर उठी, हर्षित ध्वनि और नाचने लगी। कुछ बौड़ी मंदिरानी के पास बोले, मैया मैया आज के लाया ने करवट बदल दी। बड़ा सी संवाद सुनाया कि मंदिरानी का जो रोम रोम नाच उठा वो दौड़ी आई और उठा के हृदय से लगा ली और मुख चूम करके उसके सुख समुद्र में मानो डूब गई, भावों की तरंगे बह चली समुद्र में। बोले जरा आकर के उस प्रकट में झुक गया और झुक करके उसने ये विचार किया कि जरा इसको डांट देंगे, जरा बोझ से इस गाड़े को दबा देंगे तो गाड़ा जा करके बच्चे कुचल डाले। तो न किसी का नाम हुआ न कोई बात हुई और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो संधि ये गुरु नियत इसलिए थी, भगवान तो सब जान ही गए। ऐसा भगवान ऐसी लीला के भगवान ने कि लोग तो बाल लीला हो रही है, किसी के मन में बहन आ गए उन्हें काम बन जाए तो बस अब उनको भूख लग गई, भूख लगी तो आँख खोल ली। अब चारों तरफ बाजे बज रहे, गान हो रही, गान हो रहा, मार कोलाहल मचा हुआ, सुमिल ध्वनि आनंद की हो रही और बजरानी सभी स्वागत सत्कार में लगी और रोहिणी जी भी उसी में लगी। तो और भगवान की फिर लीला माधुरी यहाँ पर तो काम करना था, ये महाराज